हमारे पालनपुर के बाद श्री चैतन्य प्रभु के जनरल सेक्रेटरी पार्टी ग्रांड सदस्य श्री भक्ति मित्रा श्री ग्रांड साथी महाराज
Thank you. आप लोगों ने अभी तक डॉक्टर नरेश चंद्र बंसल जी का भाषण सुना। रूप गोस्वामी के विविध पर्वों पर उनकी रसमय उपासना के संबंध में, ब्रज क्या है इसके संबंध में, औषध रूप इत्यादि सनातन गोस्वामी ने किस प्रकार से लुप्त तीर्थों का उद्धार किया, भक्ति ग्रंथों का पढ़ने किया और इस प्रकार से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने मनोभीष्ट कैसे पूर्ण किया इसके संबंध में प्रकाश था। विशेष करके बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है कि वृंदावन काम्यवन है, काम्यवन में वृंदावन है, किंतु इस विचार में कुछ कमियां हैं। यदि वृंदावन है तो वहां जमुना जी कहाँ है, गिरिराज गोवर्धन कहाँ है और यहाँ के कुंज लताएं कहाँ है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी जगह में वृंदावन ले आए, नित्यानंद प्रभु आए और महाप्रभु के जितने भी परिकर आए हैं यहाँ पर आए, आज तक भी आए वृंदावन में। जमुना नदी का होना और अवश्यकालिंदी जी का और गिरिराज जी भी जमुनावती इत्यादि नाम है यहाँ, ये तो शोध करता है इस विषयों को, इन्होंने शोध किया है इस पर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला और विशेष करके शिवरूप गोस्वामी की रसमयी उपासना पर प्रकाश डाला जो आज तक किसी ने नहीं किया। हम संतुष्ट हैं कि हमारे निवेदन से यहाँ पर पधारे और अपने विचारों को। अब हम लोग आदरणीय डॉक्टर प्रेम नारायण जी से मैं अब निवेदन करता हूँ रूप गोस्वामी जी जिला तिथि में उनके चौमुखी प्रतिभा का वर्णन करते हुए उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ।
वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत वांछा कल्पत रुद्रेशो कृपा सिंधु पतिता पावन वैष्णव हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेश चंद्र
डॉक्टर साहब डॉक्टर कृष्णा उन्होंने रूप गोस्वामी के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने चारों संप्रदायों की विशेष रूप से चर्चा की, वेदांत की चर्चा की। वेदांत वेद का अंग, सिद्धियों का अंग है। उस समस्त सूत्रों को संकलन कर श्री व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र या सार्वजनिक सूत्र बनाए। उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके संबंध में इन्होंने कुछ कहा। वो प्रतिपाद्य जिसका आनंदमय अभ्यास रसोमय सह आनंदमय। आनंद क्या है वेदांत में इसकी व्याख्या नहीं की, सूत्र में वही नहीं था। वो आनंद क्या है, कृष्ण ही रसस्व भक्ति रसांत सिंह ही आनंदमय का अभ्यास कैसे हो। सबसे पहले रूप गोस्वामी के विचारों को समझने की आवश्यकता है। ज्ञानी किसको कहते हैं, ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं, शुद्ध भक्त किसको कहते हैं, रसभक्तमयी भक्त कौन है। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होगा तो सबको मिश्रण करके वो भक्ति को चौपट करते। इसलिए रूप गोस्वामी के ग्रंथों का भली भांति अनुशीलन होना चाहिए, नहीं तो सब ज्ञान ज्ञानी भक्त भक्ति इत्यादि को सब हम एक ही में लपेट करते वो क्या खिचड़ी कहते हैं वो बना लें। इसलिए भक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। वेदांत का तात्पर्य क्या है, उसका प्रतिपाद्य विषय है भक्ति। ये समस्त जितने भाष्यकार हैं उन लोगों ने स्वीकार किया। थोड़ा सा अंतर है, जैसे ये कह रहे थे वो उपास्य का अंतर है, उपासना प्रणाली का केवल अंतर है। किंतु जब दृष्टि से देखा जाए तो वो आनंद, उस आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, कृष्ण की कैसे प्राप्ति होती है, जो रस समुद्र है, अखिल सामित सिंह रसो वैसहम को सुखी। वो कैसे होगा, इसी के लिए श्री लोरूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की। और उसे भी देखा जाए सब लोग, बहुत से लोग अनाधिकारी हैं, अनुपयोगी हैं इस रस के। इसलिए अनुपयोगी लोगों के लिए जो इसका रागानुगा मार्ग का शुद्ध भक्ति का स्वरूप नहीं जानते हैं उनके लिए उज्ज्वल वेद मंदिर की रचना की। इन ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय रूप गोस्वामी के विचारों में डूब करके देखना। ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं होगा। ज्ञानी प्रयासम उपास्य नमन्ते। ज्ञान क्या, ज्ञानी प्रयास, ज्ञान का प्रयास मत करो। देखो ज्ञान दो प्रकार का, एक निर्विशेष ज्ञान है जो भक्ति का विरोधी है, उसको बहुत दूर रखा, उसी यहां का कोई तात्पर्य नहीं। सर्वं खलिदं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यादि। विशेष करके भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, वो नहीं भी है, हैं भी नहीं, दोनों भी नहीं। इसलिए ऐसे ज्ञान से नहीं हो, ज्ञान की जहां परिसमाप्ति होती है वहां पर भक्ति का प्रारंभ होता है। ज्ञान माने, ज्ञान हमको है पानी पी लेंगे, पानी पीने से हमारी पिपासा शांत, ये तो ज्ञान है। पानी नहीं मिले और ज्ञान रहे क्या होगा, भक्ति अनुभूति है। उसको पानी क्या चीज है ये नहीं मालूम है तत्त्वतः, ये पानी कैसे बना, किंतु पानी मिल गया, पानी पी लिया, बस हो गया, वैसे भक्ति है। इसलिए ज्ञाने प्रयासम, कौन सा ज्ञान, ऐश्वर्य में जो भगवान का ज्ञान है उसको भी भूल जाए। वो ऐश्वर्य में ज्ञान क्या, ये नंदन नंदन है, ये कौन है?
एते च अंश कला कृष्णस्तु भगवान।
क्षण स्वर्ज में भगवान होते हैं,
इसमें स्वर्ज होता है,
किंतु स्वर्ज को भी गोपन कर आच्छादित कर अपनी योग माया से वृंदावन में वही रस आस्वादन करने के लिए वो कृष्ण के रूप में पधारे। रूप गोस्वामी ने इसको अपने प्रबल तर्क और युक्तियों पर शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर इसको प्रमाण निगम कल्प तरो गलित। क्या चीज है ये? व्यासदेव जी शारीरिक सूत्र बना चुके थे, वेदांत लिख चुके थे, पुराणों का अध्ययन भी और प्रकाश कर चुके थे, चित्त अशांत नारद जी उनके गुरु है। क्यों अशांत हो? तो गुरु जी यही तो पता है, उन्होंने बतलाया कृष्ण की लीलाओं कथाओं का आपने वैसा वर्णन नहीं किया जिस प्रकार से आपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को। मोक्ष दियमानम न गृहन्ति बिना मत सेवन अनुजन, मोक्ष को धिक्कार देते हैं भगवान देते हैं कहीं नहीं नहीं जरूर। मोक्ष माने क्या? कौन सा मोक्ष? एक तो निर्विशेष में लय होना है जिसकी बात ही नहीं चला। कौन सा मोक्ष? मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति, स्वरूप में स्थित होकर के राधा कृष्ण की उपासना, ये मुक्ति का तात्पर्य है। श्रीमद्भागवत इत्यादि मुक्ति को देने पर भी नहीं देते कोई भी साधारण एक साधक भक्त भी, हम लोग कभी साधक भी नहीं, हम लोग कभी मुक्ति कहे कोई जरूरत नहीं। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी सार्वभौम भट्टाचार्य जी उस भक्ति के इस श्लोक को ही उन्होंने बदल दिया, मुक्ति पदे सुधाय बाद उन्होंने भक्ति पदे सुधाय। महाप्रभु जी ने सामंजस्य करके समझाया ही नहीं कि ऐसा मत करो, जो व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा वही बात ठीक है। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में नारद जी ने पूछा क्या तुमने ये लिखा, सर्वस्वज्ञ संपन्न समस्त ईश्वरों के ईश्वर जो आदि कारण सबके अनादि स्वयं सबके आदि कारण है, वे गोपियों के चरण में ढूंढते हैं ये लिखा? ये तो मुझे पता नहीं। क्या तुमने लिखा कृष्ण ऐसे परब्रह्म गोपियों के चरणों में शीर्ष नवा करके कहते हैं न पा रहे हम निर्भर, लिखा तुमने? प्रभु ये तो हमको पता नहीं। क्या पता है? ये पता है राधिका जी अपने चरण का महावर जिसको कृष्ण रचना करते हैं कृष्ण कृष्ण रख करके, और कृष्ण राधिका जी वो क्या करते हैं अपने चरण कमल को कृष्ण के शिर में छाप देती है। लिखा नहीं तो? अरे जसोदा उस कृष्ण परब्रह्म को बांध देती हैं और वो रोते बिलबिलाते हैं, ये लिखा तो नहीं तो फिर क्या लिखा? श्री रूप गोस्वामी ने इन चीजों का मार्मिक विवेचन किया है अपने ग्रंथ। यदि आपने उज्ज्वल लीन मणि भगवत रसामृत सिंधु और उज्ज्वल लीन मणि का अच्छी तरह से वैष्णव के अनुगत्य में यदि आपने अध्ययन नहीं किया अनुभव नहीं किया तो आप जान ही नहीं सकते कि भ्रमर गीत क्या है, राजपंचाध्याय किस स्थिति की बात है, मदनाख्य भाव के अनुसार में ये दिव्य वो दिव्योन्माद और चित्र जल इत्यादि है, ये क्या चीज है? श्रीमद् भागवत में संपूर्ण रूप से व्यक्त है, किंतु हम लोग उसका अध्ययन वैष्णव के चरणों में बैठ करके नहीं कर, जा भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान। यदि भागवत पढ़ना है रसिक तत्वज्ञ जो भगवान के जो परम प्रिय भक्त हैं उनको के चरणों में आराधना करो। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने एक बात प्रथम उन्होंने किया क्योंकि और किसी ने स्थापन नहीं किया। कितने प्रकार के प्रेम हैं, आराध्यो भगवान प्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना भजवद्वर्गे निजा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापु मदितो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तस्त्रा। ब्रज की गोपियों की जो कृष्ण के प्रति आराधना है ये सर्वश्रेष्ठ है, किंतु आराधना क्या है? रूप गोस्वामी जी दे नहीं आते, जन कलि रूप शरीर न धरत त्यों ब्रज प्रेम महापुथरी को पांव कापाट कौन उभार। कौन उभारता प्रेम को? ब्रज की रीति क्या है? ये ब्रज की रीति है कड़ी निराली है, कहीं भी इसका वर्णन नहीं हुआ, भागवत में प्रच्छन्न रूप से वर्णन किया गया, किंतु है सभी राजपंचाध्याय की जहां पर देखेंगे पति सुतन्वय भ्रातृ ब्रह्मवान अति विलंघते अंत अच्युता। ये क्या है? पार्गी भाव। पार्गी भाव से ही कृष्ण का उल्लास होता है, इसलिए इसी का रसास्वादन करने के लिए कृष्ण ब्रज में पधारे। एक बात और भी समझना हम लोगों को, वो क्या? वो ब्रज भूमि गोलोक और ये, इसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत से लोग अंतर मानते हैं, अंतर नहीं है, केवल प्रकट और अप्रकट का अंतर है। अभी यहां पर अप्रकट वृंदावन है, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वो प्रकट होती है योग माया के प्रभाव से, किंतु उसमें इसमें कोई भी अंतर नहीं है। छाया मत समझिए उस जगत की, इसको ये वृंदावन धाम वही नित्य धाम है जहां पर कृष्ण का रास, कृष्ण की रास और सब लीलाएं हो पाती। कोई कोई भाग्यवान योग माया जब अपना पर्दा हटा देती है तब देखेंगे ये यही नित्य वृंदावन है, नित्य रास विलास यहीं पर हो रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी ने पार्थिव भाव की स्थापना की, यही रस पद्धति है। यदि वो नहीं होते तो जगत इससे वंचित रहे। चैतन्य महाप्रभु इसी भाव का साधन किया गंभीरा में, पुरी में, दिन रात इसी में रमे रहे। क्या? गोपियों के भाव। इसलिए रूप गोस्वामी की यह जो पद्धति है औपपत्य भाव, उसको शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर, अकाट्य युक्तियों के बल पर स्थापन किया। ये जागतिक नायक नायक और नायिकाओं के लिए घृणित है, विगर्भित है, किंतु यहां पर कृष्ण ही स्वयं राष्ट्र रसिक, कृष्ण ही जहां पर नायक है, गोपियां और विशेषकर अंतरंगा शक्ति, लाडना शक्ति, श्रीमती राधिका जी नायिका हों, वहां पर ये विगर्भित नहीं है। वहां पर क्या है? सब ऋषियों से श्रेष्ठ है रूप गोस्वामी ने इस पद्धति को, उन्होंने उज्ज्वल इन मणि इत्यादि के माध्यम से प्रकाशित किया। समय कुछ अधिक हो रहा है, मैं अभी दो एक और वक्ता है संक्षेप में वो बोलेंगे, मैंने कुछ धृष्टता बीच में बोलने के लिए, बहुत अच्छा हमने धृष्टता की, आप लोग इसको धृष्टता को क्षमा करें। अब मैं I'm requesting श्रीमान श्री श्रीमन भक्ति वेदांत पद्म नाम महाराज टू स्पीक समथिंग एंड टू गिव चरण पुष्प चरणांजलि इन द लॉर्ड श्री चक्षुलरो पुष्प बट इन बहुत व्यापक साधारण बात है। The glories of Sri Rupa Goswami. One or or more he can speak, but no time. So he stopped. अंत में तुम्हारो अब समय हो गया है मधुर इन समाप्ति अति अब मधुर रूप से ये समाप्ति हम गोविंद महाराज जी को निवेदन करते हैं कि वो दो शब्दों में रूप गोस्वामी के चरणों में पुष्पांजलि समाप्त करके और हम आज का उत्सव यहीं पर समाप्त करें। कल सवेरे हम यहाँ पर आएंगे और श्री बलदेव प्रभु जी के उपलक्ष्य में जो पूर्णिमा है उनका जन्म है उसमें हम लोग उनके संबंध में हम लोग कुछ बोलेंगे। बहुत से लोगों की धारणा है कि बलदेव प्रभु जी का जन्म बलदेव छठ के दिन हुआ, वो भी ठीक है। हमारे जीव गोस्वामी ने उसको स्वीकार करके भी कहा, गर्गाचार्य का वो भी गर्ग संहिता में उसका लिखा गया है। तभी हमारे जीव गोस्वामी ने कहा जो हो सकता है कि कल्प भेद हरि कथा स्वभाव कल्प भेद से हो, किंतु इस कल्प में बलदेव प्रभु जी कृष्ण के बड़े भैया हैं, एक साथ में रिंगण नामकरण एक साथ खेलना सब एक साथ में। यदि कृष्ण से बलदेव प्रभु जी एक वर्ष बड़े होते हैं करीब करीब यह संभव नहीं, तो फिर नामकरण एक साथ में कैसे हुआ, इसलिए यह तो संभव नहीं। और यदि कहो जैसे ये बलदेव छठ आ रही है उसमें तो एक वर्ष से कुछ अधिक समय हो जाता है उनके जन्म का अंतर, तो ये तब तक बलदेव जी क्या कर रहे थे, उनको कहाँ छिपा रखा था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बलदेव जी की पूर्णिमा कृष्ण से केवल कितने दिन बड़े, आठ दिन बड़े बलदेव भैया हैं, इसलिए एक साथ में उनका नामकरण हुआ। ये पूर्णिमा को इनका जन्म और अष्टमी को वक्र है कृष्ण, ये सीधे हैं, इसलिए सीधे में इनका पूर्णिमा को जन्म हुआ और उनका वो वक्र है वक्रकुट, कृष्ण जी वक्र हैं, उनकी मैया टेढ़ी है, टेढ़ी नजरिया, टेढ़ी मथुरिया नगरिया, ये वृंदावन टेढ़ा, उनकी गोपियां भी टेढ़ी वो भी टेढ़े, इसलिए वो टेढ़े ऋतु में वहाँ अष्टमी के दिन में ये प्रकट हुए। और इस तरह से ये कृष्ण जी का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। तो मैं कल हम लोग इसके विषय में सवेरे में मैं आऊंगा, वहाँ यहाँ सब विभिन्न वक्ता लोग बोलेंगे। मुझे अफसोस है कि हमारे श्रीमान माधव महाराज जी बन महाराज जी और बड़े बड़े ये सब लोग हैं हमारे, उन लोगों को मैं नहीं बोलने का अवसर नहीं दिया। मैं चाहता था कि इन लोगों का हम लोग सुने, हमारा तो आप लोग सुनते ही, तो बहुत आनंद की बात है कि हमारे अनुरोध पर अपना अपना इधर उधर का प्रोग्राम छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनका आभार मानता हूँ और इनका अभिनंदन करता हूँ और अंत में महाराज जी से कहता हूँ कि दो शब्दों में रूप गोस्वामी के चरणों में अपना दाड़िए मधुर भाव से ही उन्होंने समाप्त किया, इसलिए इनको भी धन्यवाद है। अब आज हम लोग करीब उस